दानियल की पुस्तक संख्या 192 गुप्त इतिहास का अनावरण। दानियल 11 से भविष्यवाणी संबंधी संगतियां और 144,000 की मुहरबंदी।
हम दानियल अध्याय 11 के 40वें पद के गुप्त इतिहास पर विचार कर रहे हैं, जहां सन 1989 में अंत के समय पर उसकी लिखित साक्षी समाप्त होती है और वहां से 40वें पद के बाद 41वें पद के रविवार व्यवस्था तक पहुंचती है। ये गुप्त इतिहास उस संरचना का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर अंतिम दिनों की समस्त भविष्यद्वाणी का असल निराय संयोजित की जानी है, क्योंकि 144,000 की मुहरबंदी उसी गुप्त इतिहास के भीतर होती है। वही इतिहास वो स्थान है जहां पशु की मूरत के गठन से संबंधित परीक्षा घटित होती है। इसलिए वही इतिहास है जिसमें पशुओं की मूरत के विषय में नबूकदनेस्सर का गुप्त स्वप्न अनमोहर किया जाता है। वही गुप्त इतिहास वो स्थान है जहां डोनाल्ड ट्रंप के प्रथम कार्यकाल से जुड़ा गुप्त इतिहास दानियल 11 के दूसरे पद में समाप्त होकर तीसरे पद तक पहुंचता है। वही गुप्त इतिहास दानियल की भविष्यवाणी का वो भाग है जो अंतिम दिनों से संबंधित है, और वही यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो रविवार व्यवस्था पर अनुग्रह काल के बंद होने से ठीक पहले अनमोहर किया जाता है। सत्य की ये सभी रेखाएं सातवीं और अंतिम मोहर के हटाए जाने के रूप में निरूपित की गई हैं।
दानियल 11 के 35 से 15 को उस छिपे हुए इतिहास के साथ जोड़ा जाना है, और उन पदों में से अंतिम तीन भविष्यवाणी की रेखाएं प्रस्तुत करते हैं। वे ये बताते हैं कि पापाई सत्ता कब फिर से इतिहास में प्रवेश करती है, जैसा कि 200 ईसा पूर्व में हुआ था जब मूर्ति पूजक रोम ने पहली बार दानियल अध्याय 11:14 में प्रस्तुत भविष्यद्वाणी के इतिहास में प्रवेश किया। वो पद और मूर्ति पूजक रोम के इतिहास में उस पद की पूर्ति, उस दर्शन को स्थापित किया, क्योंकि मूर्ति पूजक रोम उस शक्ति का प्रतीक था जिसने स्वयं को ऊंचा किया, परमेश्वर की प्रजा को लूट लिया और फिर गिर पड़ी। धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद ने उस पद को अंटियोकुस एपिफानेक पर लागू किया, परंतु मिलरवादियों ने उसे मूर्ति पूजक रोम पर लागू किया और उस पद को मिलरवादी इतिहास में एक परीक्षात्मक सत्य के रूप में पहचाना। आज आधुनिक लाओदिकियाई एडवेंटिज्म के धर्मशास्त्री फिर से ये सिखाते हैं कि वो अंटियोकुस एपिफानेस है, इसलिए ये फिर से एक परीक्षात्मक सत्य है। ये पद न केवल एक परीक्षात्मक सत्य है, बल्कि इसकी 200 ईसा पूर्व में हुई पूर्ति ये बताती है कि टायर की वेश्या आधुनिक रोम कब अपने शैतानी गीत गाने लगती है, और ये पोप की सत्ता के अंतिम दिनों के इतिहास में प्रवेश की ओर भी संकेत करती है। इसलिए ये अंतिम दिनों के प्रमुख परीक्षात्मक सत्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो मिलेराइट इतिहास की बहस में प्रस्तुत परीक्षात्मक सत्य के अनुरूप है। वे तीन पद धरती के पशु के रिपब्लिकन सिंह की रेखा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, और 1899 में समय के अंत पर रोनाल्ड रीगन से शुरू हुई राष्ट्रपतियों की श्रृंखला में जब वो 7 में से होने वाला 8वां राष्ट्रपति बनते हुए अपने दूसरे कार्यकाल में प्रवेश करता है, डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य सूचक कदमों की पहचान करते हैं। 12वें पद की राफिया खलाई के बाद एंटियोकस पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर एक विद्रोह को दबाता है, फिर वैश्वीकरण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करता है जिसका प्रतिनिधित्व पेनियम की लड़ाई में मिस्र करता है। ट्रंप वह युद्ध जीतता है, पर वही युद्ध तृतीय विश्व युद्ध एक्टियम की शुरुआत कर देता है। इन गतिविधियों का प्रतिरूप एंटियोकस तृतीय मैग्नस था, जिसे राफिया की लड़ाई में मिस्र ने पराजित किया था, पर जिसने बाद में पेनियम की लड़ाई में विजयी प्रतिघात किया। 13वें पद में कुछ वर्षों के बाद उरिया स्मिथ के कथनानुसार एंटियोकस अपने राज्य में विद्रोहों को दबा देने और पूर्वी भागों को अधीन करके उन्हें आज्ञाकारिता में स्थिर कर देने के पश्चात किसी भी अभियान के लिए अवकाश में था जब युवा एपिफेनीज मिस्र के सिंहासन पर आया, और ये सोचकर कि अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए ये अवसर हाथ से जाने देने के लिए अत्यंत उत्तम नहीं है, उसने पहले से भी बड़ी एक विशाल सेना खड़ी की। ट्रंप पहले अपने राज्य में एक विद्रोह को दबाएगा और फिर उससे भी बड़ी सेना तैयार करेगा जितनी उसके पास तब थी जब वो पहले पराजित हुआ था। ट्रंप 2020 में पराजित हुआ था, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 की पूर्ति में जब नास्तिकता का पशु जो विश्वव्यापी वैश्वीकरण का प्रतिनिधित्व करता है और डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिकन दोनों दलों के वैश्वीकरणवादी ने चुनाव चुरा लिया और सूर की वेश्या की एक प्रमुख प्रतिनिधि सेना के रूप में ये भी एक पराजय होगी जब पुतिन यूक्रेन पर विजयी होगा। जिन तीन पदों पर हम विचार कर रहे हैं उनमें तीसरी भविष्यवाणी की रेखा धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद की रेखा है जिसका प्रतिनिधित्व मक्काबियों की रेखा और यहूदियों पर यूनानी धर्म थोपने के लिए एंटियोकस एपिफिनीज के प्रयासों के विरुद्ध उनके विद्रोह द्वारा होता है। ट्रंप की रेखा और धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद की रेखा उन दो शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अंततः उस सींग में मिल जाएंगी जिसे पशु की प्रतिमा के रूप में दर्शाया गया है। 13 से 15 पद उस इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं जो रविवार के कानून तक ले जाने वाला है और धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद तथा भ्रष्ट गणतंत्रवाद की दो रेखाएं इन दोनों शक्तियों की परस्पर क्रिया को चित्रित करती हैं जब ये एक साथ आकर रविवार के कानून से पहले ही कलीसिया और राज्य का विलय कर देती है। पूर्ववर्ती लेखों में हम ये पहचान चुके हैं कि 1776, 1779 और 1789 की तिथियों द्वारा निरूपित तीन घटनाएं जो स्वतंत्रता की घोषणा, संविधान और एलियन तथा सेडिशन अधिनियमों का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक ऐसे काल की पहचान कराती हैं जिसने पृथ्वी के पशु के बाइबिलीय भविष्यद्वाणी के छठे राज्य के रूप में आरंभ तक पहुंचाया। इसी कारण वे तीन संकेत चिन्ह बाइबिलीय भविष्यद्वाणी के छठे राज्य के अंत तक ले जाने वाले तीन संकेत चिन्हों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम ये भी पहचान चुके हैं कि 1776 से 1779 के तक विस्तृत 22 वर्ष 144,000 की मुहबंदी के समय का प्रतीक है क्योंकि संख्या 22 दिव्यता और मनुष्यता के संयोग का प्रतीक है। हमने इस इतिहास को सत्य की छाप लिए हुए के रूप में पहचाना है क्योंकि पहला और अंतिम मार्ग चिन्ह क्रमशः स्वतंत्रता की स्थापना और स्वतंत्रता के छिन जाने का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीनों मार्ग चिन्ह पृथ्वी के पशु के मुख्य प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वे सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के बोलने का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि किसी राष्ट्र का बोलना विधायी और न्यायिक प्राधिकरणों की क्रिया होता है। 1789 का मध्य मार्ग चिन्ह है जब संविधान का अनुमोदन 13 उपनिवेशों द्वारा किया गया था और हिब्रू शब्द सत्य का मध्य अक्षर 13वां है। 1776 से 1789 तक के 22 वर्ष भी हिब्रू वर्णमाला के 22 अक्षरों से मेल खाते हैं। हमने ये भी पहचाना है कि 1798 के एलियन और सिडिशन अधिनियम वो बिंदु दर्शाते हैं जहां संयुक्त राज्य अमेरिका अजगर की तरह बोलता है। रोम के साथ यहूदियों की संधि का इतिहास जो दानियल 11 की 13 से 15वीं आयतों में धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद की रेखा का हिस्सा है उस काल का प्रतिनिधित्व करता है जब पशु की प्रतिमा बनाई जाती है और उस प्रतिमा का बनना 144,000 के लिए अंतिम परीक्षा है। उन पर मुहर लगने से पहले उन्हें यही परीक्षा पास करनी होगी। अतः 177 पार से 198 ईसा पूर्व तक यहूदियों की वो संधि उस परीक्षा का एक गंभीर तत्व है जहां 144,000 में शामिल होने के लिए बुलाए गए लोगों की संख्या पूरी की जाती। हमें तौर से कुछ भी बोलो जरूरी न ये मानना कि 127 ईसा पूर्व से 115 ईसा पूर्व का काल यहूदियों के संघ द्वारा प्रतीकित है इतिहास की शिक्षा का विरोध करता है क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि वो संघ 127 ईसा पूर्व में था जबकि मिलराइटों का मत था कि वो 115 ईसा पूर्व में था और उस तथ्य के प्रति उनका दृढ़ विश्वास दोनों पवित्र चार्टों पर प्रदर्शित है। प्रश्न केवल ये नहीं है कि इतिहासकार यहूदियों की संधि के लिए 168 BC की तिथि निर्धारण में सही हैं अथवा मिलराइट्स 150 BC की पहचान करने में सही थे। इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को भी चुनें तो एक ऐसा समूह मिलेगा जो आपके चयन से सहमत होगा। प्रश्न ये है कि क्या इतिहासकार और मिलराइट्स दोनों ही सही हैं और क्या यहूदियों के साथ की गई उस संधि के संबंध में सत्य वास्तव में इतिहास के दो संभावित एकल बिंदुओं में से किसी एक के स्थान पर एक समयावधि का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लेखों में हमने जिसे हम वैध और पवित्र तर्क मानते हैं यह दिखाया है कि रोम के साथ यहूदियों की संधि 125 से पिछले 9 साल फिर 55 ई 5 तक की अवधि का प्रतिनिधित्व करती है और ये अवधि पशु की प्रतिमा के निर्माण का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार करने का निर्णय कि रोम के साथ यहूदियों की संधि समय की एक अवधि है भी एक परीक्षा बन जाता है और उस भविष्य सूचक अर्थ में ये इस तथ्य से मेल खाता है कि पशु की प्रतिमा का निर्माण परमेश्वर की प्रजा के लिए महान परीक्षा है। ये कहते हुए 15 AD उस समय की पहचान करता है जब मक्काबियों के नाम से जाने जाने वाले धर्मत्यागी यहूदियों और रोम के बीच का गठबंधन दृढ़ता से स्थापित हुआ और इस प्रकार वो रविवार के कानून का प्रतीक है, क्योंकि बाइबल एक आलंकारिक प्रश्न पूछती है, क्या दो जन एक साथ चल सकते हैं जब तक वे सहमत न हों? 15 AD ये दर्शाता है कि कहां और कब धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद पापाई सत्ता के साथ हाथ तक मिलाता है और उस 27 AD में जो अवधि आरंभ हुई और 15 AD तक पहुंची वो उस समयावधि की पहचान करती है जो पशु की प्रतिमा के निर्माण का प्रतिनिधित्व करती है। ये पहचानना आवश्यक है कि ये अवधि ये बता रही है कि कब धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद धर्मत्यागी गणतंत्रवाद के साथ जुड़ जाएगा। वे दोनों धर्मत्यागी शक्तियां पद 13 से 15 में दर्शाई गई हैं, इसलिए उनके कुछ साझा मार्ग चिन्ह हैं। 11 सितंबर 2001 का प्रतिरूप मानते हुए 1776, 1789 और 1778 को लागू करना सही है और उसके बाद 6 जनवरी 2021 से जुड़े फॉल्स फ्लैग आंदोलन के पेलोसी के मुकदमे तथा बाइडेन के चुराए गए चुनाव का शपथ ग्रहण काल आता है जो रविवार के कानून तक ले जाता है। अनुप्रयोग में 2001 का पेट्रियट एक्ट स्वतंत्रता की घोषणा के अनुरूप एक मार्ग चिन्ह प्रस्तुत करता है जो स्वतंत्रता के हटाए जाने की शुरुआत की पहचान करता है। फिर पेलोसी और शिफ की कंगारू अदालत का दूसरा मार्ग चिन्ह जो संविधान की पुष्टि के साथ संरेखित है, इस प्रकार संविधान को उलटने की शुरुआत का प्रतिरूप बनता है और उसके बाद एलियन एस सेडिशन एक्ट का तीसरा मार्ग चिन्ह आता है जो संयुक्त राज्य को अजगर की तरह बोलते हुए दर्शाता है। इन मार्ग चिन्हों को इस प्रकार लागू करना मक्काबियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के मार्ग चिन्हों की पहचान करना है। एक अन्य स्तर पर धर्मत्यागी रिपब्लिकनवाद के साथ संबद्ध तीन मार्ग चिन्हों की पहचान एक थोड़ा भिन्न अनुप्रयोग प्रस्तुत करती है। 11 सितंबर 2001 1776 के साथ मेल खाता है, परंतु 1799 धर्मत्यागी रिपब्लिकनवाद के लिए विदेशी और राजद्रोह अधिनियमों के साथ मेल खाता है और उन अधिनियमों तथा ड्रैगन के बोलने के बीच एक भेद स्थापित करता है जिसका प्रतिनिधित्व रविवार के पालन के प्रवर्तन से होता है। जब इन दो रेखाओं को पशु की प्रतिमा की परीक्षा के संदर्भ में साथ रखा जाता है तो वे पशु की प्रतिमा की स्थापना की भविष्यवाणी संबंधी संरचना बनाती हैं और परमेश्वर के लोगों के लिए महान परीक्षा पशु की प्रतिमा का गठन है। परमेश्वर के लोगों के लिए पशु की प्रतिमा के गठन को, जैसा कि वो परमेश्वर के वचन में दर्शाया निर्मित गया है, सबसे पहले उसी रूप में पहचानना आवश्यक है ताकि वे अंतिम दिनों के लोग उस गठन को राजनीतिक और धार्मिक संसार में पहचान सके। तो 6 जनवरी 2021 के पेलोसी ट्रायल्स एलियन और सेडिशन एक्ट्स के साथ किस तरह मेल खा सकते हैं? पेलोसी ट्रायल्स उस उत्सव को चिह्नित करते हैं जो तलर हित गड्ढे के पशु ने मनाया था, जिसने अभी अभी उस धनी राष्ट्रपति को मार डाला था जिसने वैश्विक किरण को हवा दी थी। उस उत्सव का इतिहास बाइडेन के शपथ ग्रहण की अवधि से शुरू हुआ और ये एक ऐसे काल का प्रतिनिधित्व करता है जिसका अंत ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण से होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रंप 3 बार राष्ट्रपति पद के लिए अभियान चलाते हैं और पहली और आखिरी बार जीतते हैं, लेकिन बीच वाली बार उनकी जीत उस शक्ति ने चुरा ली जिसे शास्त्र जूट का पिता कहते हैं। चोरी हुए चुनाव से शुरू हुए पेलोसी ट्रायल्स एक दूसरी बदले की पेलोसी ट्रायल्स की श्रृंखला की ओर संकेत करते हैं जो तब शुरू होती है जब ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेते हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत पिलोसी मुकदमों की एक श्रृंखला से होती है और उसका अंत भी पिलोसी मुकदमों की एक श्रृंखला से ही होता है। दोनों राजनीतिक मुकदमे हैं, लेकिन दूसरी श्रृंखला में जिन पर मुकदमा चलता है वे वही लोग हैं जिन्होंने पहली श्रृंखला में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण में 147 ईसा पूर्व का वर्ष चिह्नित किया जाता है। ट्रंप का दूसरा शपथ ग्रहण 147 ईसा पूर्व से निरूपित है और यहूदी मंदिर का पुनः समर्पण राजनीतिक मंदिर के दूसरी बार पुनः समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है। उसी वर्ष अंतियुकुस एपिफानेस की मृत्यु हुई थी और वही वो शक्ति था जिसने यूनान की धार्मिक प्रथाओं को यहूदियों पर थोप दिया, जिससे 60 से 87 BC का मक्काबी विद्रोह उत्पन्न हुआ। 2025 में ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण के समय यूनान का धर्म वैश्विकतावाद संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्णतः अधीन कर दिया जाएगा और शैतानी चमत्कार कलीसिया और राज्य को एक साथ लाने के कार्य को सामर्थ्य देने लगेंगे। उस बिंदु पर ट्रंप ऐसे कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेगा जो एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स के समांतर होंगे। इस प्रकार पशु की मूरत के गठन 60-87 BC के आरंभ को चिह्नित करते हुए और वो पिलोसी ट्रायल्स की दूसरी श्रृंखला आरंभ करेगा। एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स पशु की मूरत के गठन की अवधि के आरंभ को चिह्नित करते हैं और वो अवधि संडे लॉ पर समाप्त होती है, जैसा कि 60-87 BC द्वारा प्रतिरूपित है। इस प्रकार वो अवधि जिसमें पशु की प्रतिमा का निर्माण होता है ऐसे एक्ट से शुरू होती है जो ट्रंप को मुख्यधारा मीडिया को बंद कराने, अवैध आप्रवासियों को निष्कासित करने और डेमोक्रेटिक पार्टी की साजिश में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं। इस अवधि की शुरुआत ट्रंप द्वारा किए गए राजनीतिक उत्पीड़न से होती है और यह धार्मिक उत्पीड़न के साथ समाप्त होती है। इस अर्थ में 57(1)(6) और संविधान का मध्य मार्ग चिन्ह 2021 के पेलोसी मुकदमे है, जो ऐसी अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उसी इतिहास के साथ समाप्त होती है जैसा आरंभ में था। परंतु पेलोसी मुकदमों का अंतिम समुच्चय उन लोगों के विरुद्ध एक राजनीतिक प्रत्यावर्तन है जिन पर वर्तमान में अभियोग चलाया जा रहा है और जिन्हें कारागार में डाला जा रहा है। धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद की पंक्ति में दूसरा मार्ग चिन्ह पेलोसी मुकदमे हैं जो जो बाइडेन के राष्ट्रपति काल को समेटते हैं और ये अवधि जनवरी 2025 में समाप्त होती है, जब धर्मत्यागी रिपब्लिकनवाद की पंक्ति में 57(1)(6) और संविधान का मार्ग चिन्ह 20 जनवरी 2025 को ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण के तुरंत पश्चात आने वाले कार्यकारी आदेशों के साथ आता है। इससे एक ऐसी अवधि आरंभ होती है जिसमें राष्ट्र अजगर के समान बोलता है, एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स, जो उस संडे लॉ तक ले जाती है जहां राष्ट्र अजगर के समान बोलता है। उस अवधि में 57(1)(6) द्वारा निरूपित संविधान को क्रमशः उलट दिया जाता है। ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण पर वो 7 में से 8वां राष्ट्रपति बन जाता है और पशु की छवि का गठन ये दर्शाता है कि प्रोटेस्टेंटवाद और रिपब्लिकनवाद के धर्मत्यागी सींग एक ही सींग के रूप में कैसे एक हो जाते हैं, जिसमें संबंध पर नियंत्रण प्रोटेस्टेंटों के हाथ में होता है। उसी इतिहास में जो लोग 144,000 होने के लिए बुलाए गए हैं उन्हें शीघ्र आने वाले रविवार कानून के समय सच्चे प्रोटेस्टेंटवाद के सींग के रूप में ऊंचा उठाए जाने से पहले ही मुहरबंद कर दिया जाता है। मुहरबंदी का वो संदेश जो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है और जो अनुग्रह काल समाप्त होने से ठीक पहले खोला जाता है, दानियल का वही भाग है जो अंतिम दिनों से संबंधित है। जो भाग खोला गया है वो दानियल 11 के 40वें पद का छिपा हुआ इतिहास है और पद 13 से 15 उस छिपे इतिहास के साथ मेल खाते हैं। इसलिए वो संदेश जो अनुग्रह काल समाप्त होने से ठीक पहले खोला जाता है और जिसका प्रतिरूप नबुकदनेस्सर की पशुओं की मूर्ति के छिपे भविष्यवाणी संदेश में मिलता है, वही दो डंडों के जुड़ने का संदेश है जो धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद और गणतंत्रवाद के सींगों का है, जिनका प्रतिनिधित्व पद 13 से 15 में मक्कदियों और अंतियुकुस अतीरिय द्वारा किया गया है। पशु की प्रतिमा के गठन की पहचान कराने वाला संदेश वही संदेश है जो उस पवित्रीकरण को संप्रेषित करता है जो सच्चे प्रोटेस्टेंट सींग पर मुहर लगाता है। 14वें पद में 2000 ईसा पूर्व में मूर्ति पूजक रोम पहली बार भविष्यवाणी के वर्णन में प्रस्तुत होता है, जब वो अंतियोकस तृतीय और मैसेडोन के फिलिप द्वारा बनाए गए मिस्र विरोधी गठबंधन से मिस्र के नवजात राजा की रक्षा के लिए उठा। उसी वर्ष अंतियोकस तृतीय ने प्टोलमी पंचम के विरुद्ध पैनियम का युद्ध लड़ा। उस वर्ष 13 लोगों के लुटेरों, जो दर्शन को स्थापित करते हैं, का परिचय अंतियोकस और फिलिप के बीच की एक संधि और पैनियम का युद्ध, ये सब घटित हुए। अतः ये मार्गचिह्न अंतियोकस, जो पृथ्वी के पशु के गणतांत्रिक सींग का प्रतिरूप है, और मैसेडोन के फिलिप, जो यूनान का प्राचीन नाम है और संयुक्त राष्ट्र का प्रतिरूप है, के बीच हुए एक गठबंधन की पहचान करता है। भविष्यवाणी के स्तर पर पनियम के युद्ध में ड्रैग्नेया और झूठे भविष्यवक्ता अमेरिका के बीच एक गठबंधन बनता है। इस गठबंधन का अंतर्निहित उद्देश्य मिस्र के क्षेत्र का बंटवारा करना था, जो ढहते हुए रूस का प्रतिनिधित्व करता। जब यीशु अपने शिष्यों को पनियम ले गए, तब उसका नाम कैसरिया फिलिप्पी था। हेरोद महान का पोता हेरोद फिलिप्पी ने नगर का पुनर्निर्माण कराया और उसका नाम कैसर ऑगस्टस और अपने नाम पर रखा, इसलिए उसे कैसरिया फिलिप्पी कहा गया। दोनों के बीच का संबंध रोम के साथ रोम का प्रतिनिधित्व करता है, पर फिलिप्पी कैसर की तुलना में एक छोटा रोम है, और भविष्यवाणी के स्तर पर हेरोद फिलिप्पी हेरोदियास हेरोदियास की बेटी सलोमी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए कैसरिया फिलिप्पी नाम के साथ हम पाते कि हेरोद फिलिप्पी झूठे भविष्यवक्ता का और कैसर पोप के पद का प्रतिनिधित्व करता है। अतः पैनियम का भविष्य सूचक इतिहास दो गठबंधनों का वर्णन करता है, एक जिसमें झूठा नबी ट्रंप ड्रैगन संयुक्त राष्ट्र से हाथ मिलाता है, और दूसरा जिसमें वही झूठा नबी ट्रंप पापसी सीजर से हाथ मिलाता है। सिलवी आयत में रविवार के कानून को दर्शाया गया है और वहीं त्रिपक्षीय संघ लागू किया जाता है, परंतु ये व्यवस्था वास्तव में रविवार के कानून से पहले ही 15वीं आयत और पैनियम के युद्ध में स्थापित कर दी गई थी।
परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए पोपतंत्र की संस्था को लागू करने वाली आज्ञप्ति के द्वारा हमारा राष्ट्र अपने को धर्म से पूर्णतः अलग कर लेगा। जब प्रोटेस्टेंटवाद उस खाई के पार अपना हाथ बढ़ाकर रोमी शक्ति का हाथ थामेगा, जब वो उस गर्त के ऊपर से बढ़कर आत्मवाद के साथ हाथ मिलाएगा, जब इस त्रिविध संघ के प्रभाव के अधीन हमारा देश एक प्रोटेस्टेंट और गणतांत्रिक शासन के रूप में अपने संविधान के प्रत्येक सिद्धांत का परित्याग कर देगा और पोपीय असत्याओं तथा भ्रांतियों के प्रसार के लिए प्रबंध करेगा, तब हम जान सकते हैं कि शैतान के अद्भुत कार्य करने का समय आ पहुँचा है और अंत निकट है। टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 5 695।
हम अपने अगले लेख में इस अध्ययन को जारी रखेंगे।
प्रकटीकरण किसी नई वस्तु का निर्माण या आविष्कार नहीं है, बल्कि उस बात का प्रकट होना है जो प्रकट होने तक मनुष्यों के लिए अज्ञात थी। सुसमाचार में निहित महान और शाश्वत सत्य परिश्रम पूर्वक खोज करने और परमेश्वर के सम्मुख स्वयं को नम्र करने के द्वारा प्रकट होते हैं। दिव्य शिक्षक सत्य के विनम्र खोजी के मन का मार्गदर्शन करता है, और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से वचन के सत्य उसे जात कराए जाते हैं, और इस प्रकार मार्गदर्शित होने से बढ़कर जान पाने का कोई अधिक सुनिश्चित और प्रभावी उपाय नहीं हो सकता। उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा थी, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सारे सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा के प्रदान किए जाने के द्वारा ही हमें परमेश्वर के वचन को समझने योग्य बनाया जाता है। भजनकार लिखता है, एक युवक अपना मार्ग किस प्रकार शुद्ध करे, तेरे वचन के अनुसार उस पर ध्यान रखकर। मैंने पूरे मन से तुझे खोजा है, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने न दे, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हमें यह उपदेश दिया गया है कि हम सत्य की खोज उसी प्रकार करें जैसे छिपे हुए खजाने की जाती है। प्रभु सत्य के सच्चे खोजी की समझ खोलते हैं और पवित्र आत्मा उसे प्रकाशना के सत्यों को ग्रहण करने में समर्थ बनाता है। जब भजनकार ये प्रार्थना करता है कि उसकी आंखें खुलें ताकि वो व्यवस्था में अद्भुत बातें देख सके, तो उसका अभिप्राय यही होता है। जब आत्मा यीशु मसीह की श्रेष्ठताओं के लिए ललायित होती है, तब मन श्रेष्ठ संसार की महिमाओं को ग्रहण करने में समर्थ होता है। केवल दैवीय शिक्षक की सहायता से ही हम परमेश्वर के वचन के सत्यों को समझ सकते हैं। मसीह के विद्यालय में हम नम्र और दीन होना सीखते हैं, क्योंकि वहां हमें भक्ति के रहस्यों की समझ दी जाती है। वचन को प्रेरणा देने वाला ही वचन का सच्चा व्याख्याकार था। मसीह ने अपनी शिक्षाओं को स्पष्ट किया, अपने श्रोताओं का ध्यान प्रकृति के सरल नियमों और उन परिचित वस्तुओं की ओर दिलाकर जिन्हें वे प्रतिदिन देखते और छूते थे। इस प्रकार उसने उनके मनों को प्राकृतिक से आध्यात्मिक की ओर अग्रसर किया। उसके दृष्टांतों का अर्थ बहुत से लोग तुरंत नहीं समझ पाए, परंतु जैसे जैसे वे दिन प्रतिदिन उन वस्तुओं के संपर्क में आते रहे जिनके साथ उस महान शिक्षक ने आध्यात्मिक सच्चाइयों को जोड़ा था, कुछ ने उन दिव्य सत्य के पाठों को पहचान लिया जिन्हें वो उनके मन पर अंकित करना चाहता था, और ये उसके मिशन की सत्यता के प्रति आश्वस्त हो गए और सुसमाचार को स्वीकार कर परिवर्तित हो गए। सब बात स्कूल वर्कर, 1 दिसंबर 1909।